नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉर्ज ऑरवेल की द रोड टू विगन पियर पहली बार 1937 में प्रकाशित एक गैर कथा कृति है, जिसमें सामाजिक रिपोर्टाज और राजनीतिक निबंध एक साथ आते हैं। पुस्तक का पहला भाग इंग्लैंड के औद्योगिक उत्तर, विशेषकर लैंकाशर और यॉर्कशर में महामंदी के दौर के मजदूर जीवन का प्रत्यक्ष विवरण है। ऑरवेल बेरोजगारी, बदहाल आवास, कुपोषण और कोयला खदानों के अत्यंत कठिन श्रम को निकट से दर्ज करते हैं। दूसरा भाग एक अलग किंतु जुड़ा हुआ तर्क प्रस्तुत करता है। इसमें वे अपने मध्यवर्गीय संस्कारों, ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था और समाजवाद के प्रति जन असहजता की जांच करते हैं। उनका उद्देश्य केवल गरीबी को भावुक ढंग से दिखाना नहीं, बल्कि यह पूछना है कि ऐसी असमानता समाप्त करने का दावा करने वाला समाजवाद आम लोगों को अक्सर आकर्षित क्यों नहीं करता। पुस्तक की विशिष्टता इसी दोहरी दृष्टि में है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित सामाजिक दस्तावेज भी है और अपने ही राजनीतिक पक्ष, वर्गीय पूर्वाग्रहों तथा सार्वजनिक भाषा की कठोर आत्मालोचना भी। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले औद्योगिक उत्तर में गरीबी का भौतिक और दैनिक यथार्थ। पुस्तक के पहले भाग में ऑरवेल गरीबी को केवल आय की कमी नहीं मानते, वे दिखाते हैं कि कम मजदूरी और बेरोजगारी कैसे भोजन, घर, स्वास्थ्य, निजता और सम्मान सभी को प्रभावित करती हैं। भीड़ भरे तथा जर्जर मकानों का वर्णन इस बात पर जोर देता है कि आवास की समस्या व्यक्तिगत असफलता नहीं, औद्योगिक नगरों की संरचनात्मक विफलता है। परिवारों के पास पर्याप्त गर्मी, पोषण या जगह न होना कामकाजी जीवन की निरंतर असुरक्षा को और तीखा बनाता है। ऑरवेल घरेलू खर्च और सस्ते भोजन की बाध्यता पर भी ध्यान देते हैं। उनका तर्क है कि बाहर से देखने वाला व्यक्ति गरीबों के उपभोग को अक्सर गलत समझता है, क्योंकि वह थकान, सीमित बजट, उपलब्ध दुकानों और नियमित भोजन की व्यावहारिक कठिनाइयों को नहीं देखता। इस तरह पुस्तक नैतिक निर्णय के स्थान पर परिस्थितियों का विश्लेषण मांगती है। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्गीय दूरी से बने आसान निष्कर्षों को चुनौती देती है। ऑरवेल का विवरण बताता है कि सामाजिक नीति के प्रश्नों को औसत आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। यह जानना भी जरूरी है कि असुरक्षा का अनुभव रोजमर्रा के निर्णयों, शरीर और परिवार के संबंधों को किस तरह आकार देता है। दूसरा, कोयला खदान का श्रम और औद्योगिक समृद्धि की छिपी कीमत। ऑरवेल का खदानों में उतरना पुस्तक की जांच पद्धति और उसके नैतिक केंद्र दोनों को स्पष्ट करता है। वे कोयले को किसी अमूर्त वस्तु की तरह नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे लगे मनुष्य के शरीर को सामने लाते हैं। संकरे, अंधेरे और खतरनाक भूमिगत स्थानों में काम करने वाले खनिकों का श्रम अत्यधिक शारीरिक दबाव, धूल और दुर्घटना के जोखिम से जुड़ा था। ऑरवेल दिखाते हैं कि घरों की गर्मी, परिवहन और औद्योगिक उत्पादन जैसी सुविधाएं उस श्रम पर टिकी हैं जिसे सुविधाभोगी समाज अक्सर देखना नहीं चाहता। यहाँ उनका लक्ष्य खनिकों को रोमांटिक नायक बनाना नहीं है। वे काम की कठिन लय, थकान और उसके स्वास्थ्यगत परिणामों को ठोस रूप में रखते हैं। इससे श्रम की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है। जिन कामों के बिना आधुनिक जीवन रुक जाएगा, वे काम करने वाले लोग फिर भी असुरक्षित आवास और सीमित अवसरों में क्यों रहते हैं। यह विरोधाभास पुस्तक के आर्थिक तर्क को बल देता है। प्रत्यक्ष अवलोकन के जरिए ऑरवेल पाठक को उत्पादन और उपभोग के बीच के अदृश्य संबंध पर विचार करने के लिए बाध्य करते हैं। यही रिपोर्टाज को केवल यात्रा वृत्तांत से अलग बनाता है। तीसरा, प्रत्यक्ष भागीदारी वाली रिपोर्टिंग की शक्ति और उसकी सीमाएं। द रोड टू विगन पियर की विश्वसनीयता का बड़ा आधार ऑरवेल की भागीदारी वाली रिपोर्टिंग है। वे औद्योगिक क्षेत्रों में रहते हैं, सस्ते और खराब ठिकानों का अनुभव करते हैं, मजदूरों से मिलते हैं और खदान के भीतर जाते हैं। इस निकटता से उन्हें ऐसी इंद्रियगत और व्यावहारिक सूचनाएं मिलती हैं जो दूर बैठकर लिखे गए नीति लेखों में छूट सकती हैं। उदाहरण के लिए, आवास की गंध, भीड़, ठंड और श्रम की थकान गरीबी को मानवीय अनुभव के रूप में समझने में मदद करते हैं। फिर भी पुस्तक को पूर्णतः निष्पक्ष समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण मानना उचित नहीं होगा। ऑरवेल स्वयं अपने मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि और उससे उपजे आकर्षण तथा वितृष्णा के बारे में लिखते हैं। उनकी दृष्टि सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन वह एक बाहरी पर्यवेक्षक की दृष्टि भी है। यह आत्मस्वीकृति पुस्तक की कमजोरी से अधिक उसकी बौद्धिक ईमानदारी है। लेखक अपने देखने के ढंग को अदृश्य नहीं रहने देते। आधुनिक पाठक के लिए इससे एक उपयोगी पद्धतिगत सबक निकलता है। प्रत्यक्ष अनुभव आंकड़ों का विकल्प नहीं, पर उसका आवश्यक पूरक हो सकता है। साथ ही अनुभव लिखने वाले की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होता है। जिम्मेदार रिपोर्टिंग के लिए निकट अवलोकन, आत्मालोचना और व्यापक संरचनात्मक संदर्भ तीनों आवश्यक हैं। चौथा, वर्गीय संस्कार और समाजवाद से पैदा होने वाली दूरी दूसरे भाग में ऑरवेल का केंद्रीय प्रश्न है कि जिन लोगों को आर्थिक समानता से लाभ मिल सकता है वे समाजवाद से दूर क्यों रहते हैं। उनका उत्तर केवल प्रचार या अज्ञान में नहीं है, वे ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था के भीतर बचपन से सीखे गए शिष्टाचार, गंध, उच्चारण, पहनावे और सामाजिक दूरी के संकेतों पर विचार करते हैं। मध्यवर्ग और मजदूर वर्ग के बीच बनी घृणा, शर्म तथा श्रेष्ठता की भावनाएं राजनीतिक मत को भी प्रभावित करती हैं। ऑरवेल विशेष रूप से उन समाजवादी समर्थकों की आलोचना करते हैं जिनकी भाषा, जीवन शैली या नैतिक उपदेश साधारण मतदाताओं को अलगावकारी लग सकते हैं। उनका तर्क यह नहीं कि असमानता के विरुद्ध राजनीति छोड़ दी जाए, बल्कि वे कहते हैं कि किसी विचार की नैतिक और आर्थिक आवश्यकता पर्याप्त नहीं होती यदि उसके प्रतिनिधि लोगों की वास्तविक संवेदनाओं को तुच्छ समझें। इस विश्लेषण में उनकी अपनी सीमाएं भी दिखाई देती हैं। समाजवाद की उनकी परिभाषा पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है और कुछ सामाजिक आंदोलनों के बारे में उनके निष्कर्ष विवादास्पद रहे हैं। फिर भी पुस्तक राजनीतिक संप्रेषण का स्थायी प्रश्न उठाती है। व्यापक बदलाव के लिए नीतियों के साथ ऐसी भाषा और संस्कृति चाहिए जो संभावित सहयोगियों को अपमानित या भयभीत न करे। अंत में समाजवाद के पक्ष में रहते हुए समाजवादी राजनीति की आलोचना ऑरवेल का रुख पुस्तक को साधारण दलगत प्रचार से अलग करता है। वे स्पष्ट रूप से समाजवाद के पक्ष में हैं, क्योंकि उनके लिए औद्योगिक गरीबी और वर्गीय विशेषाधिकार का समाधान अधिक समान सामाजिक व्यवस्था में है। लेकिन वे यह भी मानते हैं कि किसी न्यायपूर्ण लक्ष्य के समर्थक अपने व्यवहार, प्रतीकों और तर्कों से उस लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वे अपने राजनीतिक साथियों की आलोचना को विरोधी पक्ष की सहायता नहीं बल्कि आंदोलन की विश्वसनीयता के लिए जरूरी काम मानते हैं। यह दृष्टि उनकी व्यापक लेखकीय नैतिकता से जुड़ी है, जिसमें सत्य निष्ठा को मित्र और शत्रु दोनों पर समान रूप से लागू करना चाहिए। पुस्तक यह चेतावनी भी देती है कि राजनीतिक विचारधारा जब वास्तविक जीवन से कट जाती है तब वह लोगों की जरूरतों की बजाय अपने समूह की पहचान बचाने लगती है। ऑरवेल के कुछ निर्णय आज के पाठक को संकीर्ण या असंगत लग सकते हैं, विशेषकर अन्य प्रगतिशील आंदोलनों के बारे में। इन सीमाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर भी मूल पाठ उपयोगी है, क्योंकि वह राजनीतिक निष्ठा और आलोचनात्मक स्वतंत्रता को विरोधी नहीं मानता। सामाजिक न्याय की मांग को प्रभावी बनाने के लिए आंदोलन को अपने वर्गीय पूर्वाग्रह, भाषा और सार्वजनिक छवि की जांच करनी होगी। निष्कर्ष में द रोड टू विगन पियर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जॉर्ज ऑरवेल को केवल डिस्टोपियन उपन्यासों के लेखक के रूप में जानते हैं। आधुनिक ब्रिटेन के सामाजिक इतिहास, श्रम अध्ययन, पत्रकारिता, वर्ग राजनीति और समाजवादी विचार के विद्यार्थियों को इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन तथा राजनीतिक तर्क का असाधारण मेल मिलेगा। पुस्तक पढ़ते समय इसके ऐतिहासिक संदर्भ को याद रखना जरूरी है। यह 1930 के दशक के ब्रिटेन की परिस्थितियों से लिखी गई है और लेखक के कुछ सांस्कृतिक निष्कर्ष आज सीमित, असहज या विवाद योग्य लगते हैं। फिर भी यही असुविधा इसे उपयोगी बनाती है, क्योंकि पाठक को लेखक की सहानुभूति के साथ उसके पूर्वाग्रहों की भी जांच करनी पड़ती है। व्यावहारिक स्तर पर यह कृति सिखाती है कि गरीबी पर चर्चा करते हुए अनुभव, आवास, भोजन, श्रम और सम्मान को अलग नहीं किया जा सकता। बौद्धिक स्तर पर यह बताती है कि सही मानी जाने वाली नीति भी असफल हो सकती है यदि उसकी भाषा लोगों की पहचान और आशंकाओं को नहीं समझती। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी खासियत दो भागों की तनावपूर्ण एकता है। पहला भाग औद्योगिक जीवन का जीवंत साक्ष्य देता है, जबकि दूसरा भाग उस साक्ष्य से निकलने वाली राजनीति पर लेखक को भी कटघरे में खड़ा करता है। इसलिए यह न तो केवल सामाजिक सर्वेक्षण है, न केवल वैचारिक घोषणा पत्र। यह न्याय, वर्ग और राजनीतिक ईमानदारी पर गंभीर, जटिल और अब भी प्रासंगिक पाठ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉर्ज ऑरवेल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।